فرجا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره من هو الذنوب ولا يخبر الإيتاء والزود. بسم الله موتن منتقص سواه وكل معنه مزموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعم وأعواز المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال فلا كان في مكان فيجوز إليه الانتقال ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي الواقف بجميع السياسات والحكم والعارف بما في اللوح والقلم سيدنا الممجد وبشيرنا المصدق ونذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين فسيما على الإمام المنتظر والهدى الثاني عشر والأب المشتهر ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلى الله عليه محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
آج کی اسٹارٹنگ میں ایک چھوٹی سی بہت ہی پیاری سی ٹپ, لیکن اس ٹپ میں آپ کو پریکٹیکلی کچھ نہیں کرنا, کچھ کام پریکٹیکلی کرنے کے ہوتے ہیں. اور کچھ چیزیں ہمارے اسکول آف تھاٹ سے, ہماری تھیوری سے, ہماری ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ وابستہ ہوتی. ابھی تک جو کچھ میں نے بتایا وہ سب پڑھنے وڑھنے کا تھا, لیکن اب یہ پڑھنے کا کام نہیں ہے, یہ اپنے ذہن کو بدلنے کا ایک آرٹ ہے. ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کی قیمت ہے اور قیمت ادا کی جاتی ہے تاکہ اس چیز کو خریدا جا سکے. کپڑے قیمت کے بدلے لیے جاتے ہیں, زمین قیمت دے کر خریدی جاتی ہے, اور چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز آپ کائنات اٹھا لیں, ہر چیز کی ایک ویلیو ہوتی ہے, ایک مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے. اچھا پروردگار عالم کی نظر آنے والی جتنی نعمتیں ہیں نعمتوں کی قیمت ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی, ابھی نظر نہیں آتی, لیکن آفٹر سم ٹائم ہمیں نظر آئے گی. جیسے وہ رات والے مولانا محترم میں فرما رہے تھے نا, تجسم اعمال, ہم کچھ کر رہے ہیں اور وہ چیز قبر میں, وہ چیز برزخ میں ہماری آنکھوں کے سامنے مجسم ہو کر آ جائے گی. خیر اب میں قبر جہنم, صبح اتنا امت کو ڈرا دیا میں نے سنا یہاں کے, اب مزید ڈرانے کی گنجائش نہیں رہی. لیکن اصل بحث یہ ہے کہ جو نظر نہیں آتی چیزیں, ان چیزوں کی قیمت, ان چیزوں میں سے, ان نعمتوں میں سے خدا مدال کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جنت, بہشت. اور یہ بہشت ویکتی ہے, اس بہشت کی اینٹیں آتی ہیں, اس بہشت کا کارا آتا ہے, اس بہشت کا سیمنٹ آتا ہے, اس بہشت کی کنسٹرکشن کی قیمت دی جاتی ہے. اس سے پہلے کہ میں جنت کی قیمت کو آپ کی خدمت میں بیان کروں, ایک روایت کا چھوٹا سا ٹکڑا, وہ روایت تو بہت لمبی ہے, ابو الاسود دوئیلی کی روایت ہے. کہا کہ میرا روضہ سے گزر ہوا, روضہ ایک بہت دردناک وحشت زدہ بیابان تھا. جب خلیفہ چالیس کے زمانے میں ابوذر غفاری کو بلایا ہے کسی بات پہ دربار میں, تو ابوذر سے عثمان بن عفان نے پوچھا, ابوذر تمہارے نزدیک محبوب ترین جگہ کائنات میں کون سی ہے؟ کہا انڈرسٹوڈ سی بات ہے, مدینہ تو رسول کے, اللہ کے نبی کا شہر. کہا اور کون سی جگہ ایسی جس سے تم نفرت کرتے ہو؟ کہا روضہ. انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ روضہ جا کر چھوڑ دیا جائے اور وہیں پر بے, جسے کہتے نا بے کسی کے عالم میں, قسمہ کرسی کے عالم میں, غربت اور تنہائی کے عالم میں ابوذر غفاری پیامبر کے عزیز ترین صحابی کا انتقال ہو گیا. ابو الاسود دوئیلی کہتے ہیں میں ایک دفعہ روضہ سے گزر رہا تھا, میں نے ابوذر کو دیکھا, میں ابوذر کی خدمت میں پہنچا, میں نے جا کر سلام عرض کیا اور سلام عرض کرنے کے بعد حال چال پوچھنے کے بعد میں نے پہلا جملہ کہا, جس نے ابوذر میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا میں زندہ رہوں گا اور مجھے نہیں پتا تم زندہ رہو گے, لیکن ہماری اس ملاقات کا کوئی نتیجہ نہیں ہے, تو مجھے گدی سنا دو پیغمبر کی. میں نے سوچا اگر آج کے معاشرے میں کوئی مومن حدیثیں سنانے کی عادت ڈال لے تو لوگ میرج ہال میں اس ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے جہاں پر وہ بیٹھا ہوگا, مجلس میں اس جگہ نہیں بیٹھیں گے جہاں وہ بیٹھا ہوگا. ہڈی آپ کے نیچے ہو گئی, पता मैंने बाद लोगों को देखा बेचारी जाकिराएं नहीं है, लेकिन ऐसे ही थोड़ा सा कभी किसी को टोक दिया, हिजाब पर टोक दिया, नमाज पर टोक दिया, तो लोग कहते हैं मुलिया नहीं आ गई, अभी देखना इसका पेपर पढ़ चालू हो जाएगा, इतना बोलेगी दिमाग नहीं बना देगी। यार मैं तो इसीलिए शादी के बाद बैठती नहीं हूँ, जब बैठते हैं बोलते हैं नहीं पहनती बेटा आसी में पहना करो, ये जो हिस्से खुले रह जाते हैं ना मैडम के सामने, ये लोहे की सलाखों से दागा जाएगा समझते हैं। आयरन रॉड देखिए कभी बच्चों ने, कभी कभी आयरन रॉड हम पानी को बॉइल करने के लिए भी ड्यूरिंग द ट्रैवल इस्तेमाल करते हैं, आयरन रॉड तो गर्म होने के लिए रख दो, उसके बाद जब वो गर्म हो जाए तो उसके बाद लगाना शुरू कर दें। ये जो मेहंदी वाले हाथ बच्चों की खुशहाली में देखे यंग गाइस के उनके मियों के मेहंदी वाले हाथ ना मैडम को हम ले रहे हैं दे रहे हैं, बेटा कोई बात नहीं इस मेहंदी के साथ फरिश्ते क्या करेंगे, मुमकिन है ड्रिल मशीन चला दें। फरिश्तों के पास सबसे बड़ा कमाल है, उनके पास अजाबों में बड़ी वैरायटी है, जिस तरह खुदा के पास जन्नत के अंदर नेमतों में बड़ी वैरायटी है ना, इसी तरह उसके पास जन्नत में अजाबों में बड़ी वैरायटी है। हम कंसिडर भी नहीं कर सकते क्या होगा, लेकिन बार बार छोड़ दें ऐसे लोगों को जो बेचारे थोड़ा सा कभी हमारे भी मारूफ कर देते हैं, थोड़ा सा किसी ने कह दिया, रात है आज बड़ी रात है, आपने किसी को देखा तो बच्चे आपस में दूसरे को लतीफा सुना रहे हैं, आपने टोक दिया बेटे लतीफे सुनाने की रात नहीं है, तब बोलते ना मुझे बिल्कुल जहर लगती है, यानी बच्चों का ये रिस्पॉन्स है टीवी देखने की रात है, फिर आपकी तकलीफ शुरू हो गई। लेकिन बार बार वो पैगंबर के साहबा थे अबू रसूल ने दोली ने मुझे गफारे से कहा दी थी, एक हदीस सुना रहे, वो एक लंबी सी हदीस सुना, उसका एक छोटा सा टुकड़ा जो मेरी टिप के साथ रिलेटेड है, मैं मस्जिद की तरफ चली जाऊँ। कहा पैगंबर ने कहा मैं जोहर का की नमाज के बाद मैं घर से निकला मस्जिद के करीब पहुंचा, मेरा दिल चाहा मस्जिद में रसूलुल्लाह बिल्कुल अकेले, कोई मोहब्बत करने वाला साहबी पास ना हो। और इत्तेफाक ऐसे हुआ जब मैंने मस्जिद के अंदर अपना सर दाखिल किया तो मैंने देखा पैगंबर अकेले बैठे और पैगंबर के साथ मेरे मोमिन है, जहां आफ्ताबे रिसालत है वहां माहताबे इमामत होना भी चाहिए। कहा कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और मैंने जाकर पैगंबर की खिदमत में सलाम रख लिया और कहा या रसूलुल्लाह अइज़नी मुझे मोइज़ा कीजिए। पैगंबर ने कहा या अबाज़र अकरिम अंता अंता मिन्ना अहले बैत, ऐ अबाज़र तुम्हारा मकाम बहुत बड़ा है तो हम अहले बैत का हिस्सा हो। उसके बाद पैगंबर की एक रिवायत का छोटा सा टुकड़ा था या अबाज़र इन्नल्लाह जल्ला सनाहु लतुदखिल क़ौमन अल-जन्ना, ऐ अबूज़र गफ़ारी खुदावंद आलम जब क़यामत हो गई सब सारे प्रोसेस कम्प्लीट हो गए एक दिलों को जन्नत में दाखिल करेगा। अब जब जन्नत में चले जाएंगे इन्हें इतनी नेमतें दी जाएंगी, इतनी नेमतें दी जाएंगी हत्ता तमिलू। ये मैंने टीचर सेशन में टीचर के साथ मेरा सेशन था उसमें बयान भी किया इस रिवायत को, कहा खुदा अंदर इतनी नेमतें देगा कि वो थक जाएंगे। ये थकना वो थकना नहीं है क्योंकि वो सूरह बकरा के बाद का है कि कयामत में जन्नत में जन्नतियों के लिए थकन का एहसास तक नहीं है। कहा आपने कभी देखा दुनिया में आपके आगे मुफे से डाल दिया जाता है और घर वाला आके आपसे इंसिस्ट करता है थोड़ा सा आपने तो आप कहते नहीं इनफ, अच्छा अभी इनफ है क्या सारी जिंदगी इनफ रहेगा नहीं। अंदर सोच बात है वक्त की तौर पर हम नेमतों से शेर हो जाते हैं। कहा खुदा ने जब नेमतें देगा ये मोमिन शेर हो जाएगा इसी वक्त में एक गिरोह को देगा दरजातुल उला अपने से बेहतर जन्नत अपने से अच्छी जन्नत में इजा नजर इलैहिम अरफूहुम जैसे उन्हें देखेगा पहचान जाएगा और कहेगा कुन्ना माहुम फिद दुनिया अरे ये तो हमारे साथ थे। अगर आप किसी अपनी स्टेट की मिसाल दें मौत से हम साथ जाते थे मजलिसों में हम साथ जाते थे हज पे हम साथ थे ज़ियारत पे हम साथ थे कुन्ना माहुम हम दुनिया में एक दूसरे के साथ थे ये हमारे भाई हैं ये हमारी बहनें हैं फब इमा खुश दिल तुम्हें लेना परवरदिगार इनको हम पर बेहतर हमारी और इनके दरमियान जो फर्क आया है जन्नत का उस जन्नत के फर्क की वजह क्या है। और मैंने उस दिन भी मुझे याद है मिसाल दी थी कि प्लेन से आप सफर करते हैं प्लेन में भी दो क्लासेस होती हैं एक इकोनॉमी और एक बिजनेस। अब बिजनेस क्लास का टिकट पे करके आप एक्सपेक्ट मत करें कि आपको बिजनेस इकोनॉमी का टिकट पे करके इंसान एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसे बिजनेस क्लास में बिठाया जाएगा। जैसा गुड़ आपने डाला है उतना ही मीठा आपको दे दिया जाएगा। लेकिन ये जन्नत जो खुदा का बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत है औरतें बड़ी खुश होती है जन्नत माँ के पैरों पर रख दी खैर जन्नों में बात होता माँ के पैरों के नीचे आ जाती इस जन्नत की कीमत क्या है एक छोटा सा सेंटेंस पैगंबर की रिवायत और मैं इस जुमले को यहीं पर समेट दूं अल्लाह की जात से हुस्ने ज़न रखना पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट अल्लाह। हम कब अल्लाह की जात से हुस्ने ज़न रखते हैं एक जुमले के अंदर बयान करूं जब हमें वो दे रहा होता है। और हम कब खुदा की जात से बदगुमान हो जाते हैं अल्लाह देता रहे ऐसा दिन में मैं कभी सोचूं असल कुरान में चली चाहिए तो उर्दू ने मत अल्लाह ला तो सुहा तुम अगर अल्लाह की नियमतों को गिनना चाहो गिन नहीं पाओगे। मैं आपके सामने तीन कॉलम खोलती हूँ मैं कॉलम खोलूंगी फुलफिल आप परसों कीजिएगा आज रात दाई बात है, शबेदारी की अजादारी की रात है, कल का पूरा दिन अजादारी में गुजर जाएगा, परसों जब आप रिलैक्स हो जाए सब उससे, और उसके बाद फिर आप अपनी कॉलम को फिल कीजिएगा। पहला कॉलम वो नेमतें जो मांगने पर मिली, जुमला दोहरा दू, वो नेमतें जो मांगने पर मिली, बेटियां थी बेटा नहीं था, मिसाल के तौर पर अल्लाह ने दे 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 दे, अच्छा एक ही दे दे, मैं बेटे वाली कहला हूँ, मेरी बेटियां भाई वाली कहला है, ये एक छोटी सी मिसाल मैंने दी। परवरदिगारा हम इस नेमत से महरूम थे, हमने मांगी, किसी को तुमने दी किसी को नहीं दी, घर अपना घर नहीं है, रेंट बेसिस पर रह रहे हैं, अल्लाह दे 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 दे, अल्लाह ने दे दिया। इस तरह की बहुत सारी नेमतें हैं, हमने अल्लाह से नेमत को मांगा, अल्लाह ने वो नेमत हमें अता कर दी। ये पहला कॉलम है। अब आप इसमें पिछले 5 साल की मेमोरी को रिकॉल करें और इसको फुल करना शुरू करें, बहुत सारी नेमतें याद आएंगी। बच्चे आगे बैठे हैं, इम्तिहान में पोजीशन आ जाए, रमजान के राउंड टेबल की दीनी अख्तार में पोजीशन आ जाए, यू हो जाए वो हो जाए, ये ट्रॉफी मुझे मिल जाए वो कब, हम औरतों की तो दुआएं ही बड़ी अजीब होती है, दर्जी टाइम पे कपड़े दे, वरना एयरपोर्ट जाते हुए पिक करने पड़ेंगे, हाय मेरे खुदाया, ऐसी लेकिन मिल जाती दुआ, आप मांगते हैं, अच्छा तस्वीर के दाने गिरा रहे हैं, कोई अच्छा हर किसी के पास अपना स्टाइल होता है, कोई सुलतहरा की नमाज मान रहा है, कोई बीबी के सलाम भर रहा है, कोई पता नहीं रोजे की मन्नत मान रहा है। हमारे पास एक कॉलम जिंदगी में उन नेमतों का था जिन्हें हमने खुदा से मांगा, अल्लाह ने दे दिया। इसे आप भरना चाहे ना, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड बड़ी आसानी से भर सकते हैं। दूसरा कॉलम बोले वो नेमतें जो मांग रहे हैं अभी तक नहीं मिली, वो नेमतें जो मांग रहे हैं अभी तक नहीं मिली। अच्छा ऐसा ऐसा अल्लाह से बदगुमानी भी है, सबकी सुनता है मेरी नहीं सुनता, लोग मुझसे ज्यादा गुनाहगार उनकी सुनता है मेरी नहीं सुनता, मैं तो इतनी मस्जिद में भी जाती हूँ और मैं तो इतने नेक काम भी करती हूँ, मैं तो हिजाब भी करती हूँ और मैं तो नमाज भी पढ़ती हूँ, लोग कुछ नहीं करते, अल्लाह उनकी सुन रहा है। ओके ये अल्लाह से बदगुमानी का कॉलम है, हम नेमतें मांग रहे थे अल्लाह ने हमें दी नहीं दी, हम भाई 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 करते रहे अल्लाह ने भाई नहीं दिया, हम बड़ा घर मांगते रहे नहीं मिला, हम अच्छे दामाद मांगते रहे नहीं मिले, अच्छी बहुएं मांगते रहे नहीं मिले, शौहर की प्रमोशन हो जाए नहीं हुई, इंक्रीमेंट लग जाए नहीं हुआ, मैं इस बीमारी के फेज से निकला हूँ नहीं निकली। तीसरा और आखिरी कॉलम, ये पहले दो कॉलम बहुत आसानी से भरे जा सकते हैं, तीसरा और आखिरी कॉलम कुरान चैलेंज करता है, इसे भरना चाहो भर नहीं पाओगे। वो कौन सा कॉलम है? बिन मांगी नेमतें अता होनी जो की जाती है, जो नेमत अल्लाह ने, सबसे पहली बात हम जब पैदा हुए थे हमने अल्लाह से कहा हम शिया घर में पैदा रहे, अंडरस्टूड सी बात है, मैंने ये दुआ नहीं मांगी, आपने मांगी नहीं, हम ऐसा 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 कोई ऐसी कोई दुआ हमारे क्रेडिट पर थी नहीं। अच्छा दूसरी चीज, परवरदिगारा तुमने जिनके घर में पैदा किया है, जो मेरे माँ बाप कहलाते हैं, मेरी माँ के दिल में मेरे लिए महर डालते, हमने खुदा से दुआ मांगी नहीं, नहीं, माओ के दिल में महर है अल्हम्दुलिल्लाह, उनके दिल में महर था। हमारे आलिम बरादर बुजुर्गवार बड़ी प्यारी मिसाल देते थे, कहा था कायनात को चलाने का निजाम है ममता, परवरदिगार ने मूसा, परवरदिगार से मूसा ने सवाल किया, परवरदिगार तुमने माँ के दिल में ममता क्यों रखी, परवरदिगार ने कहा मूसा देखना चाहता है क्यों रखी है, कहा बिल्कुल दिखाएगा तो मैं देखूंगा, देखा हजरत मूसा की आंखों से हिजाब हटे, देखा एक बहुत गर्म सहरा है, शदीद गर्मी है, एक खातून हांफती कांपती मोटे ताजे बच्चे को गोद में लेकर जा रही है, परवरदिगार से कहने के परवरदिगार इसमें ममता कहां है, कहा ये ममता है, ये औरत इस बच्चे को उठाकर जा रही है, थोड़ी देर बाद देखें जब ममता नहीं रहेगी तो क्या होगा। जैसे ही खुदा ने दिल में एहसास डाला हुआ निकाल दिया, और हमारे कुछ गुनाहों की वजह से ये एहसास कम भी हो जाता है, दिल से ममता का एहसास जैसे निकला, बच्चे को जमीन पे पटक के कहती मुझे किस पागल ने कहा है, मैं इतना मोटा ताजा बच्चा उठाकर चलूं, जलता है जले मरता है मरे, मैं तो अपना सफर जो आराम से कर लूं, कहा है मूसा कायनात का निजाम नहीं चलता अगर माँ के दिल में ममता ना होती। आप देखिए एक छोटी सी मिसाल आप मुमिनात को दूं, फजर की नमाज का अलार्म बजता है, परवाज का बंद कर दिया जाता है, सराहाने बज रहा है, टी 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 लगे हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के, अब तो सेलफोन ने अलार्म वालों की बेचारों की मार्केट खराब कर दी, बज रहा है बंद कर दिया, बच्चा रो रहा हो कोई माँ नहीं कहती कि मेरी आंख नहीं खुली, ऑटोमेटिकली अलर्ट उठकर बैठ जाती है, हाय मैं मर जाऊं क्या हुआ, कमाल तो ये कि बच्चा साथ वाले रूम में भी उठ के रोता है तो माँ यहाँ पर उठ जाती है, कायनात को चलाना था ना परवरदिगार ने, हमने अल्लाह से तशय्यो नहीं मांगा था अल्लाह ने दिया, माँ के दिल में ममता नहीं मांगी थी दी, बाप हमारे मेंबर से माओ को बड़ा हाईलाइट किया जाता है, बापों को बड़ा नुकसान पहुंचाया जाता है, बाप एक इंसान को खाने के लिए कितना चाहिए, मर्द अकेला उन्होंने फुटपाथ पे भी सो सकता है, बैचलर्स के साथ भी रूम शेयर कर सकता है,
लेकिन अगर उसके पास बच्चे हैं, उसके पास बीवी है, उसे इन सब के सारे एक्सपेंसेस को बियर करना पड़ता है, अपनी जान पर झेल जाता है, ये खा ले, ये आराम से रह ले, खुद जो डिग्रीज नहीं हासिल कर पाया और आज के अंदर वो चाहता है, खुद जिस गाड़ी में नहीं बैठ पाया औलाद के लिए वो तलब करता है, खुद जिस घर को नहीं, जिस घर में नहीं रह पाया औलाद के लिए वो तलब करता है। परवरदिगार हमने बाप के दिल में मोहब्बत मांगी थी, नहीं दी। अब ये आखिरी कॉलम, इन तो उर्दू नियमत अल्लाह ला तो सुहा। देखो तुम खुदा की नियमतों को शुमार करना चाहोगे ना, गिन नहीं पाओगे। जब हम इन तीनों कॉलम्स को भरते हैं, मैं कॉलम स्पीड पे दो रहा हूँ, आप बोलेंगे वैसे इतना स्पीड पे बोलती हैं, जहर आंटी मजीद स्पीड की जरूरत नहीं है। खैर, अब आप मेरी स्पीड पे इतराज नहीं करेंगे और मैं मुझे भी आपके सलाह ना पढ़ने में कोई इतराज नहीं है। पहला कॉलम, वो नेमतें जो मांगते रहे मिल गई, बहुत सारी नेमतें थी, वो नेमतें जो मांगते रहे नहीं मिली, अभी तक पेंडिंग में पड़ी है, पता नहीं कभी अल्लाह देगा या हम ऐसे ही दुनिया से चले जाएंगे। मजे की बात है, इमाम साजी कहते हैं अगर मोमिन को पता चल जाए जो दुआ मुस्तजाब नहीं होती उसके बेनिफिट कितने, वो दुआ करेगा खुदा है कोई भी दुआ पूरी ना हो गई। और आखिरी कॉलम, वो नेमतें जो बिन मांगे देता है परवरदिगार, उन नेमतों में से एक नेमत अजादारी की नेमत थी, सैयद शोहदा की के कंपेनियंस की। एक अजीब सिफत मैं आज बयान करूं और आज मैं कोशिश करूंगी सुबह की कंपनसेशन अभी करूं। सुबह तो घड़ी की सुइयां भी रुक गई और मेरा दिल भी बैठ गया, 56 मिनट की मजलिस मैंने अपने रिकॉर्डर पे देखी, मैंने कहा जलल खाली की अवाम पर जुल्म नहीं है खुल्ला खुल्ला, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगी सुबह वाला हिसाब बराबर कर डालू। जो मोमिनात सुबह बिजली अभी भी है उनको कम से कम इतनी ज्यादा अजियत ना होने पाए। जो चीज सैयद शोहदा के सहाबा में, मजे की बात है, मैंने थोड़े दिन पहले मेंशन किया था जितनी क्वालिटीज इमाम हुसैन की कंपेनियंस में ना, वही सारी रिक्वायरमेंट्स हैं इमाम जमाना की। अब हम सोचे वो कैसे लोग थे, इमाम जमाना के साथ भी 313 में 50 औरतें हैं, औरतें कैसी होंगी? मैं आपको एक छोटा सा जुमला कहूं, मैंने जिंदगी में बहुत सारी औरतें देखी जो गीबत नहीं करती, लेकिन आज तक जिंदगी में सिर्फ एक औरत ऐसी देखी जो सुनती भी नहीं और वो भी मरहुमा हो चुकी। कितनी आसानी से हम गुनाह कर लेते हैं हम औरतें, बिलाकर कोई ना कोई औरतें तो ऐसी होंगी जिनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी पाई जाती होंगी मौला उन्हें अपनी सुप्रीम कलेक्शन के अंदर रखेंगे। मिसाल के तौर पे एक आलिम ने वो जबर का, आपने देखा है शायद जानते हो, जबर का एक इल्म होता है, एक आर्ट होता है, जबर का इल्म सीखा, उससे वो पता चलाना चाहता था इमाम जमाना कहां पाए जाते। उसने देखा, उसने जो इंडिकेटर थे वो इंडिकेटर तेहरान के बहुत छोटे से एरिया के छोटे से घर में पाए जा रहे, बेचारा बेकरार होता हुआ वहां पहुंचा, देखा दरवाजा खुला है, दरवाजे को जरा सी दस्तक के अंदर चला गया, सामने जनाजा पड़ा हुआ, उसके ऊपर कफन चफन बुर्दे जवानी सब निपटा हुआ और मौला अकेले खड़े। मौला से कहने का मौला यहां क्या कर रहे, कहा इस औरत से जनाजा पढ़ाने का हुक्म दिया खुदा ने मुझे। अब इस शख्स ने बेकरारों के कहा मैं इतने साल से मर रहा हूं ताकि आपको ढूंढ सकूं और आप इस औरत के घर में पाए जाते हैं। कहा मौला इस औरत में ऐसी कौन सी सिफत थी कि आपको हुक्म दिया गया आप इस औरत का जनाजा पढ़ाने से घर तक जाए। का इस जमाना था रजा शाह का, ईरान के एक्स प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट भी बादशाह था। रजा शाह ने 7 साल एक कंपेन चलाई कश्मीर हिजाब, ईरान के अंदर किसी औरत को सर ढांकने की इजाजत नहीं थी और जो औरतें हिजाब करती थी ना उनके साथ इतना बुरा सलूक किया जाता था, बाद में मारा पीटा जाता था, बाद तक बसों में चादरें खींच ली जाती थी। और मैंने लास्ट में तेहरान एयरपोर्ट पे बहुत अच्छा बोर्ड भी देखा, उसके ऊपर एक तुर्क मोमिना का टर्किश गर्ल का दिखाया जा रहा था, उसने विक के जरिए अपने आप को कवर किया हुआ था अपने सर को, क्योंकि आप सब जानते हैं तुर्की के अंदर और बाहर फ्रांस वगैरह के अंदर रिस्ट्रिक्शन है, आप हिजाब करके पब्लिक प्लेस पर नहीं जा सकते। और नीचे किरानी लड़की को दिखाया गया था पीछे से भी बाहर निकले में आगे से भी, और एक जुमला लिखा हुआ था मेरी बहन वो मजबूर है विक से अपना पर्दा बचाए, तुम्हें मजबूरी नहीं है तुम अपने पर्दे को इस तरह से अर्दा करती हो। हमारे मोमिनियों के दरमियान कुछ लोगों की सोच ऐसी है, जनाब जैनब कुबरा का भी तो पर्दा चला गया था, बकौल हमारे कहले मेंबर के जैनब का पर्दा लेने वाला शिमर रिजोल्यूशन था, मेरे पूरे सर्कल में कोई शिमर जैसा नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि गैरतमंद साहिबान ईमान घरों में ऐसा कोई बाप कोई भाई कोई बेटा कोई शोहर पाया जाता हो जो बीवी से खुद रिक्वेस्ट करता हो नंगे सर निकल जाओ, सीथ्रू कपड़े पहन लो, इतनी इतनी आस्तीनें पहन लो, डीप नेक पहन लो। ताज्जुब की बात यह है कि ये सारे इश्यूज हमारे दरमियान हैं, इमाम उस औरत का जनाजा पढ़ाने के लिए पहुंच गए, ऐसी औरतें चाहिए। ظہور کی منتظر خواتین، اگر خدا نے زندگی اور سعادت دے دی اور مجھے کوئی اور ٹاپک صدق کے گھر کے لیے نہ دیا گیا تو میں نے فرائیڈے کی مجلس کے لیے رکھا ہے. کون سی ایسی عورتوں کی جنہیں قبروں سے نکالا جائے گا اس سے کہ امام ان کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہی وہ کوالٹی تھی تو امام حسین کے ساتھ جتنی خواتین تھیں، چاہے وہ امہ لیلا تھی، چاہے وہ امہ سعد تھی، چاہے وہ رملہ تھی، چاہے وہ امہ فروا تھی، چاہے وہ بنو ہاشم کے شہزادیاں تھیں، زمانے کے امام کی اندھی اطاعت. آنکھیں بند کر کے مولا آپ نے کہا کھڑی ہو جاؤ، کھڑی ہو گئی. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیں گے. ہارون مکی کا واقعہ ممبر سے شاید ہزاروں دفعہ پڑھا گیا ہے، لیکن جب میں اس واقعے کو پڑھتی ہوں میرے اندر ایک عبرت کا چھوٹا سا چراغ جل جاتا ہے. کوئی ایک بیچارہ میرے جیسا امام سعدی کے پاس بیٹھ کر کہنے کا مولا آپ کو پتا ہے میں کوفہ سے آ رہا ہوں، آپ کے چاہنے والوں کی 100,000 تلواریں آپ کے لیے تیار ہیں، ہم نے دھار تلوار کی تیز کر کے رکھی ہے، آپ کھڑے تو ہوں، جہاد تو قیام تو کریں، ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے. یہ زبان سے جتنا یہ جملہ کہنا آسان ہے نا دنیا کا کوئی جملہ کہنا آسان نہیں. اور نہ امام سعدی پہلے امام ہے جنہیں یہ جملہ کہا گیا، اس سے پہلے امیر المومنین کو کہا گیا. سقیفہ کے بعد ایک شخص آیا بیچارہ، پورا گروپ تھا، ایک آدمی نہیں تھا، 4-5 آدمی، یگ گائے، جوان خون جذبات اور جوش سے بھرا ہوا وجود. مولا آپ قیام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اچھا مولا نے سنتے رہے بات ساروں کی، جب سب کی بات ختم ہو گئی نا مولا نے کہا، مدینے کے باہر ایک راؤنڈ اباؤٹ تھا، ایک میدان تھا، مولا نے کہا تم لوگ کل اتنا سا کام کرنا، یہ سروں پہ جو بال ہے ان کو منڈوا کر، منڈوانا سمجھتے ہیں ٹریمر پیٹ سرو، بالکل ایسا نہیں کہ آپ بالکل گنجے ہو جائیں، سروں کے بال منڈوا کر تم لوگ یہاں پہنچ جانا، پھر ہم پلان کریں گے ہم نے کیسے پروٹیسٹ کرنا ہے، کیسے کھڑے ہونا ہے، کیسے جہاد کی پالیسی بنانی ہے. اچھا جو سب سے زیادہ بڑھ کر کے بول رہا تھا نا وہ گھر آئے، بیگم نے پوچھا آج بڑے خوش ہیں کیا بات ہے؟ تو آج مولا نے میری بات مان لی ہے، پر مولا نے کہہ دیا کہ ہم کل قیام اور جہاد کی پالیسیز کو جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. اور ایک چھوٹی سی شرط لگا دی ہے، بیگم نے کہا کیا؟ کہا کچھ نہیں مولا نے کہا یہ جو سر کے بارے میں مڑوا کے پہنچ جانا. اب نئی نئی شادی ہوئی تھی، بیگم صاحبہ نے تصور میں سوچا تھا گجے ہوگی کیسے چلے، شروع ہو گئی ان کی تقریب. بہت ساری عورتیں مسلم کی، کچھ مردوں نے نہیں عورتوں نے خالی کی تھی، تاریخ گواہ. بہنیں آئیں بھائی کو لے گئی، بھائی بیٹیاں آئیں باپ کو لے گئی، بیویاں آئیں شوہروں کو لے گئی، مائیں آئیں بیٹوں کو لے گئی. مسلم نے جب آخری نماز نافلہ ختم کی مڑ کر دیکھا مسجد میں تنہا ہیں. یہ عورت ہے جو جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتی ہے گھر کے باقی افراد کے لیے. کہا کہ دیکھیں آپ تو اس طرح بڑے جیت لگیں گے، اچھے نہیں لگیں گے. اب ایک طرف مولا کی خواہش اور ایک طرف وہ لاڈلی نئی نویلی زوجہ، مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سن لیا، کہنے لگے نہیں بھائی میں نہیں اس طرح سے جاؤں گا، میرا تو میں بہت امبیرسمنٹ فیل کروں گا، سب سے زیادہ مسجد میں میں بول رہا تھا. کہا ایسا کریں بالکل باریک نہ کریں، ہلکی پھلکی فلمنگ کر لیں اور کس کے آپ میں اربوں کی، شاید آپ نے جو حضرت یوسف جیسی فلمیں دیکھی ہوں، عرب مرد سر پہ کپڑا باندھا کرتے اور سر پہ کس کے چھوٹا سا رومال باندھ کے نا، وہ آپ سعودی سٹائل کا سر پہ کپڑا رکھ لیجیے، مولا کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ آپ کا سر مڑا ہوا نہیں ہے، بار بار سلکے سے چھوٹے کر لیا آپ نے. اب اس کو کہتے ہیں رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ. کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا میں مل جائے دین بھی مل جائے، عزیز نعمان دین اور دنیا ایک نیام میں دو تلواروں کی مانے جائیں، آپ دونوں کو ایک ساتھ بٹھا ہی نہیں سکتے. بات سنی جن کو لگ بھی گئی کہ بیگم بھی خوش ہو جائے گی، مولا کو کہاں پتا چلے گا اتنے لوگ جمع ہو جائیں گے، اگر ایک میرے سر کے اوپر کپڑا ہوگا مولا کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی. وہاں پر پہنچے سلمان آلریڈی وہاں پر بیٹھے تھے، سلمان کہتے ہیں میں نے دیکھا کچھ مدینے کے جذباتی نوجوان آ کر بیٹھ گئے ہیں، مولا کا انتظار کرے، مولا آئے اور آنے کے بعد ان کی تعداد کو گنا، اتنی قلیل تعداد تھی. اور یہ جو سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے بولا تھا نا مولا نے ذوالفقار سے سر سے کپڑا اتارا اور ایک جملہ کہا، ہماری خواہش پر بال منڈوانے کا پیشنس نہیں ہے، سر کٹوانا تو بہت بات کی بات ہے. یہ ہارون مکی بھی ایسے ہی تھے، ہارون مکی کے زمانے کا یہ مومن، مولا آپ کھڑے ہوں ہم آپ کے ساتھ ہیں. مولا نے کہا اچھا جاؤ ایسا کرو سینے خانہ میں میری کنیزوں نے تندور دہکایا ہے روٹیاں بنانے کے، اس میں جا کر بیٹھ جاؤ. ایسے غصے سے ہائے ہائے مولا میں آپ کو اتنے اچھے سے اوپینین پڑھاؤں اور آپ مجھے جلنے کا کہہ رہے. بیٹھا رہا، ہارون آئے، روایت کا جملہ ہے تاریخ گواہ ہے، ہارون کی بغل میں جوتا تھا، مکہ سے آئے مدینہ، قبر پیغمبر پر حاضری دی، تورات نماز پڑھی، زیارت کی، کب فرزند رسول کی زیارت کے لیے آگئے، آ کر کہا صلی اللہ علیہ وسلم ابن رسول اللہ. امام نے سلام کا جواب دیا، ہارون ابھی کچھ نہیں بولے. امام نے کہا ہارون سینے خانہ میں تنور روشن ہے اور جا کر اس میں بیٹھتا. ہارون نے یہ نہیں کہا کہ مولا جوتے رکھ لوں باقی چیزیں رکھ لوں، यूं कर लूं। हारून ने वहीं से उठे, उसी तरह से उनके कदमों से जाकर तंदूर का ढक्कन उठाया और उसके अंदर जाकर बैठे। मौलाना करीब को इशारा किया, ढक्कन वापस कर दो। अंदर का तंदूर जल रहा है, कोयले दहक रहे हैं, आग के शोले भड़क रहे हैं। अब ये मोमिन बेचारा कभी यूं होता है, कभी यूं होता है, कभी बेचैन होता है, कभी पैर लंबे करता है, रहा नहीं गया, पेशेंस खत्म हो गया। कहा यबना रसूलुल्लाह, वो चाहने वाला है जल के खाक हो गया होगा, वो चाहने वाले जल के खाक हो गया होगा। मौलाना कह रहे देखने क्या हाल है, जो चाहने वाले होते हैं, जो चाहने वाले होते हैं उनका हाल क्या होता है। मौलाना कहने को हुक्म दिया तंदूर का ढक्कन हटाओ। जब तंदूर का ढक्कन हटाया गया, वो परवरदिगार जिसने इब्राहिम के लिए आपको गुले गुलजार कर दिया था, हारून ने मक्की के लिए भी आपको उसी तरह से गुले गुलजार कर दिया
है।
हमसे गर्मी बर्दाश्त होती, बहुत सारे लोगों से पूछे मोजे पहन ले, यही गर्मी बर्दाश्त होती, यहाँ की बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ कितने सब्जी टूट रहे हैं, बहुत शदीद आप कहीं पसीने में नहा जाएं, घर जाएं, शावर लें, फ्रेश लें। उस कयामत के 50 अभी आखिरी सवाल है, मंजिल मसाइल में पहुंचा। कयामत के उस 50,000 साल के दिन में मुझे नहीं पता कयामत के मैदान में कहीं शावर अरेंजमेंट है या नहीं, पता चले वहां पर पोर्टेबल टॉयलेट्स की तरह पोर्टेबल बाथरूम चल रहे हैं, जिस मोमिन को बहुत गर्मी लग रही है वो इधर तशरीफ लाए और आकर एक शावर ले ले, नहीं ऐसा कुछ नहीं। जरा सी गर्मी लगती है पसीने पहुंचते हैं, बह रहे हैं पसीने, अपने आप को फौरन ढूंढते हैं एसी कहां लगा हुआ महफिल, उसी के पास आकर बैठे ठंडक ही ठंडक रहे। घरों में अलहमदुल्ला सुकून है, मस्जिद में सुकून है, गाड़ियों में सुकून है, हर जगह सुकून है, फिर भी यार पैरों को बहुत अजियत करते हैं मुझे। मैं कभी सोचूं वो सब्र जो एक मोमिन का खासा था रहा हमारे दरमियान, वो सब्र देखा है तो करबला की सरजमीन पर से। दो जुमले उस शहजादी के लिए जो अमराउ कैस की बेटी है, शहीद शौहरत के अजवाज का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था, इनसे बीवी मौला की बीवियां बड़े चुने हुए खानदानों से, जनाब शहरबानों शाही खानदान से ताल्लुक है, जनाबे उम्मे लैला बनू सकीत का कि वो शहजादी है, जनाबे उम्मे रबाब अमराव खैस की बेटी। इतना नाज है, इतना इतनी मोहब्बत है सैयद इब्न ताऊफ अलैहिर्रहमा ने अल्लहू फी कत्ल उतूब के फुट नोट में शेर को मेंशन किया है। मैं सिर्फ दो शेर आपके कदमों में बयान करूं और मसाइल के कुछ जुमले। एक शेर इमाम हुसैन से निस्बत दी जाती है, सैयद इब्न ताऊफ ने कहा मैं नहीं पता इमाम हुसैन का है या नहीं है, निस्बत उलमा यही कहती कि इमाम हुसैन के जुमले कि दिन और रात ढल जाते हैं, हुसैन का उस घर में दिल नहीं लगता जहां में रबाब और सकीना ना। यह हुसैन की मोहब्बत है, इतनी बीवियां हैं लेकिन तो उम्मे रबाब है, उम्मे रबाब बहुत ही ज्यादा चाहत है। शहजादी ने भी उस मोहब्बत का जवाब दिया जी जाने सैयद सौदा का ये शेर अगर देह में रहे ना तो 11 मोहरम को उम्मे रबाब ने भी शेर कहा। जब निकल रही है करबला के मैदान को छोड़ उस लाश सरपारा को देखा और कहा करबला के सेहरा को जिस फखरे सुलेमान के वजूद से साया था आज वो वजूद करबला की सरजमीन पर बेगौर कबर पड़ा। वाली रबाब जा रही है, मजबूर है, बेबस है, कोई चारा नहीं, खुदा की कसम जब तक जिंदा रहूंगी साये में नहीं बैठूंगी। अगर इमाम हुसैन ने मोहब्बत दिखाई तो मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत दी है सामने से सौदा ने। उलमा तारीख ने नकल किया जब गई है यहां से मदीना पहुंची है, मदीने में जब तक रही है जिंदा रही है जब तक साये में नहीं बैठी, जिंदगी का आखिरी लम्हा था, शिद्दत से बारिश बरस रही है। अहले अरब की खवातीन ने सैयद सज्जाद से कबेरा सैयद सज्जाद अब उम्मे रबाब तलब हो जाएगी, मर जाएगी, इतनी तेज बारिश है, जाकर मां से कहो थोड़ी देर के लिए साए में आ जाए। उलमा मखातिब लिखते हैं आए सैयद सज्जाद खिदमत उम्मे रबाब में आकर कहा अम्मा उठिए। हसद भरी नजरों से सैयद सज्जाद को देखिए नहीं कहां कहा साए में, घर के अंदर वाले हिस्से अंदरूनी हिस्से में चले जाओ उजरे गले में, कहा बेटा सद्दात से कितना बता दूं, बेटे बन के कह रहे हो या इमाम बन के हुक्म दे रहे हो? अब सैयद सज्जाद का अपना सख्त इम्तिहान है, माँ है, सैयद सज्जाद कभी माओ के साथ दस्तरखान पर नहीं बैठे। जब किसी ने कहा मौला दस्तरखान पर नहीं बैठते, कहा मुझे डर है मैं किसी चीज की तरफ हाथ बढ़ाऊं, और मेरी माँ के दिल में पहले से इरादा हो उस चीज की तरफ हाथ बढ़ाने का, मेरा हाथ माँ के हाथ पर मुकद्दम हो जाए, इतना एहतराम। लेकिन अब ये मोहब्बत का तकाजा है, माँ के एहतराम का तकाजा है कि माँ को इस बारिश से निकाला जाए। कहा अम्मा इस सब बेटा बन के लिए इमाम बन के हुक्म दे रहा, उठ जाइए। और सैयद सज्जाद ने हाथ आगे बढ़ाया ताकि माँ का हाथ थामे और माँ को जमीन से उठा, आसमान की तरफ इशारा करके कहा परवरदिगार एक इमाम से वादा किया था, जिंदगी भर साए में नहीं बैठूंगी, एक इमाम हुक्म दे रहा है, अम्मा उठिए साए में से, खुदा है तू मेरा पर्दा रख ले। बस इसके बाद में सैयद सज्जाद ने माँ की आवाज नहीं सुनी और सैयद सज्जाद से बिना गाय ना लिल्ला इस शहजादी की मुसीबत क्या है, बेकरारी क्या है। उर्मला भी काते है सदी, जिस चक्की का मैंने कल या परसों की मस्जिद में तस्किरा किया, वाकई करबला के बाद किसी सिपाही के साथ बैठा हुआ था, किसी ने सवाल किया ऐ उर्मला तेरे जैसा तीर अंदाज नहीं देखा था, लेकिन करबला में तेरे दो निशाने गलत थे, कुल्लर तीर की तीन तीर चलाए लेकिन दो निशाने गलत थे। कहा कि हाँ, कहा वो दो निशाने जो गलत थे वो कहाँ थे? कहा मैंने देखा हुसैन खैमों से हवा के दामन में कुछ ला रहे हैं। उमर साहब पहले मरहले पर कहते हैं उर्मला तुम्हारे ख्याल में हुसैन कुरान ला रहे हैं? मैंने कहा हो सकता है हुसैन को अब्बास की शहादत ने तोड़ दिया है, अकबर की शहादत ने नूर नजर ले लिया है, कासिम का लाशा उठाना हुसैन का बहुत बड़ा इम्तिहान था, अब शायद हुसैन मुसालहत के लिए कुरान ला रहे। कहा लेकिन जब हुसैन हमारे करीब पहुंचे हुसैन ने बात का दामन उठा दिया, हमने अपनी आंखों से देखा हुसैन के हाथों पर एक शीश मारा बच्चा था। अब यहाँ हमसे का जुमला पढ़ करूं, खुदा हमेशा गोदियों को आबाद रखे, ये गोदियों गोदियों की रौनक बहुत बड़ी नेमत है परवरदिगार को। कहा हुसैन के हाथों पर एक बच्चा था, बच्चा तलज्जी की कैफियत में था, किसी ने किसी अरब से पूछा तलज्जी किसे कहते हैं? कहा मछली को पानी से निकाल दो, तीन मरहले होते हैं उस मछली के पास, पहले मरहले पर मछली जमीन पर उछलती है और गिरती है, फिर मछली निढाल हो जाती है, बेदम हो जाती है, जमीन पर सिर्फ करवट से बदलती है, कभी दाएं पहलू पर जाती है कभी बाएं पहलू पर जाती है। कहा तीसरी और आखिरी कैफियत होती है मछली इतनी निढाल हो गई है, इतनी पानी से दूर हो गई है, मछली मुंह को खोलती है और बंद करती है, मछली की इस कैफियत को तलज्जी कहते हैं। रावी कहता मैंने देखा हुसैन के हाथों पर बच्चा तलज्जी की कैफियत में है, अली असगर मुंह को खोलते हैं और बंद करते हैं। मैं कभी सोचूं मेरा बाप किस तरह से ऐसे बच्चे को वाली के हाथ में दिया होगा। हमने बात असातिज़ा के मुंह से सुना है मुंह में पल्लू रखता था, अली असगर के मुंह पर गीला हाथ फेरना चाहती हैं, खैमों में पानी नहीं। लेकिन ये जुमला माँ ने कहा था ए अली असगर जब दादी फातिमा ज़हरा के पास पहुंचो ना कहना माँ मौत में बरसी, मुंह धुला कर नहीं भेज सकी। उर्मला बिन काहिल असदी कहता है मैंने देखा हुसैन के हाथों पर एक बच्चा है, तलज्जी की कैफियत है। हुसैन ने हम फौजियों का रुख किया, कहा ए उमर साहब तुम्हारे फौजियों में कोई मुसलमान है? लोग खामोश रहे। कहा कोई साहिब औलाद है? अगर मेरी और तुम्हारी जंग है ये बच्चा तो बहुत मासूम और कमजोर है। ए उमर साहब अब इस मिली इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, ये बच्चा तलज्जी की कैफियत में है। कहा हुसैन ने जैसे ही हाथों को आगे बढ़ाया उर्मला कहता है मुझे उमर साहब ने इशारा किया एक साथ कलाम हुसैन, ए उर्मला हुसैन की कलाम को मुनकता कर दे। अब ये उर्मला कहता है मैंने पहला तीर चिल्ले में परोया, मुझे महसूस हुआ दरे खैमा पर इस बच्चे की माँ आ गई और सारे जुबान हाथ से ये कह रही है ए उर्मला मेरा असर बहुत छोटा है, ए उर्मला तू मेरे असर की तमसीली तो दे, मेरा बच्चा तो अपने कदमों में चल के मैदान जंग में नहीं गया। कहा मेरा पहला तीर खता गया, दूसरे तीर पर जैसे मैंने दूसरा तीर चिल्ले में भरोया मुझे महसूस हुआ खैमे का पर्दा उठ गया है, बच्चे की माँ खैमे से बाहर आ गई है। कहती है उर्मला मेरी गोद को वीरान करके तुझे क्या मिलेगा? تم کو اصغر کیا خبر تیرے ستم کھانے کے بعد شاہ کتنی دیر روئے تم کو دفنانے کے بعد. امام مظلوم نے لاشا دفنا دیا, حسین آئے خیموں میں, یہاں تاریخ خاموش ہے. کن الفاظ میں میرے باپ کو تسلی دی, لیکن صرف ایک منظر بیان کرو رجلو مل اللہ. وہ 11 محرم کی کیفیت ہے جب اس لوٹے ہوئے قافلے کو جلے ہوئے خیموں کی ریت پر بٹھا کے عمر سعادت میں سپاہیوں کو سروں پر تقسیم کرنا شروع کیا ہے. ایک شکی کو قاسم کا سر دیا, کسی کو اکبر کا سر دیا, کسی کو انا محمد کے سر دیے. سروں کو دیکھتا ہوں کہ کہتا اپنے سپاہیوں سے ان سروں میں ایک سر کم ہے. سپاہی نے کہا امیر کس کا؟ کہا یاد کرو جب حسین آخری لمحات میں آئے تھے, حسین کہا تو میں ایک چھوٹا بچہ تھا, مجھے اس فرحائی شہدا میں اس کمسل بچے کا سر نظر نہیں آتا. ام رباب نے یہ جملہ سنا تو ان کے ذہن میں کمرہ کے پاس گئی, کہا بی بی کیا میرے بچے کی لاش نکالی جائے گی؟ پہنچے اشیا, زمینیں کربلا پر پھیل گئی, ہر جگہ نیزے گاڑے جا رہے ہیں. جلے ہوئے خیموں کی پشت پر ایک شخص نے جب نیزہ زمین پہ گاڑا, صرف نیزہ تھا لیکن جب نیزے کو زمین سے نکالا گیا اصغر کا 6 مہینے کا لاشا. روایات مختہ کہتی ہیں ام رباب کھڑی ہو گئی اپنے گھر میں, شہزادی ماں سے نہیں پائے گی. میرا آخری سوال اجر کو مل اللہ, خدا سوائے زمین سید شہدا کی کسی غم میں نہ رلائے, ہمیشہ اولاد کی خوشیاں دکھائے پروردگار. میں شہزادی سے پوچھ لوں 6 مہینے کے بچے کے سر کو جب نو کے سنا میں دیکھا ہوگا, جب راستے نے نو کے سنا پر علی اصغر کا سر نظر آتا ہوگا. مجھے نہیں معلوم ام رباب نے وہ دن کیسے گزارے, لیکن ایک ماں کی زبان حال ہے, کہتی ہے جب خالی مصر پر ہاتھ جاتا تھا ام رباب اصغر کو یاد کرتی تھی. جب ٹوٹے ہوئے تبرک آدھی دے اس ننے سے کرتے کو دیکھ کر علی اصغر کو یاد کرتی تھی. کسی آدھے طرف بانی نے سید الشہداء کو خواب میں دیکھا, پوچھا مولا میں نے سنا اس قبر شیشگوشا میں آپ کے دونوں بیٹے دفن ہیں, اکبر کی قبر نظر آتی ہے اصغر نظر نہیں آتا. حسین مظلوم کہتے تم جانتے نہیں بچہ کتنا چھوٹا تھا, ماں کی گود سے چھڑایا گیا, اسے باپ کے سینے پہ سلا دیا.
بتاؤ مولا لی ننا میرا سر.